नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पर। और आज हम अपने हमसाया मुल्क की बात करेंगे कि भाई ये हमसाया मुल्क जो है, पहले तो लोग कह रहे थे कि ये कहीं चार में टूट सकता है क्या या पांच में टूट सकता है क्या। यहाँ तो लगता है कि भाई हर जिला अलग अलग होना चाहता है। हमारे साथ हैं आज सुशांत सरीन जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट और ख़ास तौर से पाकिस्तान के एक्सपर्ट। आपका स्वागत है सुशांत जी। देखिए, आज हमने खास तौर से थंबनेल पे आपकी जवानी की फोटो इसीलिए लगाई है कि आप जो है आपकी आपका म्यूट है शायद।
मैंने तो नहीं म्यूट किया, आप ही लोगों ने किया होगा मेरे को म्यूट।
जवानी के थंबनेल फोटो इसलिए लगाई है कि जिसे आपकी बातें जो है आज बिल्कुल जवानों की तरह रहे।
सर देखिए, मैं जवान तो अभी भी हूँ, उम्र तो मेरी 25 वर्ष है, लेकिन सिर्फ बाल थोड़े से सफेद हो गए हैं, उड़ गए हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा है साहब, कभी BLA आ जाता है, कभी TTP आ जाता है, कभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट प्रॉपर आ जाती है, कभी कोई एक्स आ जाता है, कभी कोई वाई आ जाता है। मतलब पाकिस्तान को कितनी तरफ से चपेट पड़ रही है, जरा हमें समझाइए। तो मैं आई हैव लॉस्ट काउंट। पहले तो खाली अननोन गनमैन होते थे, तो उनको तो नामालूम अफराद कह के और छोड़ दिया जाता था। अब तो यहाँ सारे के सारे मालूम अफराद है।
नहीं संजय जी, ये सारी की सारी जो ये जो ताकतें हैं देव, और ये सारे के सारे गिरोह जो हैं या तंजीमें जो हैं, ये कोई नई नहीं है। ये सब की सब कम से कम 10-15-20 कुछ उससे भी ज्यादा पहले की हैं। ये कभी दबी रहती थी, फिर उभर के आ जाती थी, फिर इनको दबा दिया जाता था, मामला कभी सुलझाया नहीं। पाकिस्तान में एक एक टेंडेंसी है कि अगर कोई इस तरीके की तंजीम है, ज्यादा बड़ी होने शुरू हो तो उसको खत्म ना करो, उसकी आइडियोलॉजी को ना इम्पैक्ट करो, उसको रहने दो, लेकिन उसको कट इट डाउन टू साइज। तो उसको जैसे वो बॉन्साई टाइप का होता है, वो अब वो बॉन्साई बनाना इन्होंने बंद कर दिया, वो उसको बॉन्साई टाइप रखते थे, अब वो उभर करके एक दरख्त बन गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक जो पाकिस्तानी रियासत है वो कमजोर हो गई है, पैसे नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है, राजनीतिक जो एक एक तरीके के रूल्स ऑफ द गेम थे, हम तो उनको रूल्स नहीं मानेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो रूल्स ऑफ द गेम आप उसको मान सकते हैं कि उसमें फौज हावी रहती थी, बाकी सब उनके इर्द गिर्द घूमते थे, फौज का हुक्म चलता था, फौजी जनरल जो था, जो एक 12वीं पास या 12वीं फेल आदमी होता है, वो अपना डंडा वंडा घुमाता था तो सबके सब लाइन में खड़े हो जाते थे, अब वो होना बंद हो गया है। तो ये जो एक अफरा तफरी का माहौल है, जो 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 पिलर्स ऑफ स्टेट थे वो पहले एक 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 इकट्ठ में काम करते थे, अब वो भी अलग अलग डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तो एक तो दैट स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो अनरैवल करना शुरू हुआ, ऊपर जो रियासत की जो ताकत थी वो खत्म होनी शुरू हो गई। ठीक है, आपने फौज बड़ी बना रखी है, आपने असला खूब सारा ले रखा है, वो सब कुछ है आपके पास, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपके घर को दीमक की तरह सब लोग चाट गए हैं, तो फिर तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ना बिफोर द होल थिंग स्टार्ट्स फॉलिंग। अब वो कोलैप्स क्या होगा भारत में, मेरे को नहीं पता कि क्यों लोगों ने ये बना रखा था कि जी वो चार टुकड़ों में कटेगा। भाई ये किसने आपको बोला कि ये इतनी नीट एंड क्लीन सर्जरी होगी, ऐसे कहीं पे थोड़ी होता है। अगर ये हुआ जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, तो फिर वो जो एक पुराना गाना था ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, तो वो वाला हशर होना है इनका। बट अकल नहीं आती ना। अब ये पंजाबी है, पंजाबी मुसलमान जो है, इससे ज्यादा बेवकूफ आपको कौम दुनिया में नहीं मिलेगी, और इनको अकल आती नहीं थे, समझते हैं अपने आप।
भाई बंधु है ना,
हाँ
आपके ही तो भाई बंधु हैं।
नहीं मेरे तो नहीं है, हमने तो इनको मलेच डिक्लेयर कर दिया था। तो
अच्छा,
तो नहीं बट बॉटम लाइन ये है ऑन अ मोर सीरियस नोट, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इनके दिमाग में ये बात घुसती नहीं है और इनको ये लगता है कि डंडा चला दो तो सब ठीक हो जाएगा, कल्चर भी वहां पर यही है। तो अब वो जब तक ठीक हो सकता था वो करते रहे आप ठीक, अब वो नहीं हो रहा क्योंकि दूसरों के पास भी वो डंडा आ गया। तो जहां पर बलोचों का असर और रसूख है, जहां पर उनकी एक तंजीमें बना रखी हैं या उनका एक नेटवर्क है वहां पर वो स्ट्राइक करते हैं, जहां पर तालिबान और या पश्तून बहुल एरियाज हैं या जहां पर उनका वर्चस्व है वहां पर वो स्ट्राइक करते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले क्या 3-4 दिन के अंदर जो हमले हुए हैं फ्रॉम द डाउन साउथ, तुर्बत में हमला होता है और उसके अगले दिन आपका बिल्कुल अप नॉर्थ में जो आज हमला हुआ है वो हो जाता है। बीच में भी होते रहे हैं हमले जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर नॉर्थ
देखिए,
वजीर।
मैं एक मिनट में इसको, क्योंकि दर्शक जो है वो पूछ रहे हैं कि साहब इसको पूरा डिकोड कीजिए कि कौन कहाँ लड़ रहा है, किसका क्या एरिया ऑफ ऑपरेशन है, क्या क्या हमले हुए हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि आज ईरान भी कूद पड़ा, बताते हैं ईरान ने भी फिर से कुछ शुरू कर दिया है। तो एक तो देखिए, सबसे
ईरान वाले
पहले जो शुरुआत हुई थी वो कुर्रम एरिया से हुई थी, और कुर्रम का जो खारलाची एरिया है जो पक्तिता प्रोविंस के सामने आता है, वहाँ पर क्लैशेस हुए थे और फिर वहाँ पे तालिबानियों ने उनकी चौकी उड़ा दी थी, कोई 16 अफराद हलाक हुए थे जो ज़्यादातर रेंजर और FC वाले थे।
ये जो
उसके
अभी
बाद
हाल,
फिर
ये जो हाल का इंसिडेंट हुआ है आप उसकी बात कर रहे हैं?
नहीं, मैं अभी पिछले जो 15 दिन की बात कर रहा हूँ, पूरे
अच्छा।
पिछले 15 दिन की। तो शुरुआत कुर्रम एरिया से हुई थी, और ये जो 16 लोगों के नाम मैं बोल रहा हूँ, इनके नाम जारी किए थे पराचिनार के जो मेडिकल हॉस्पिटल उनका जो है मेडिकल सेंटर उसने। उसके बाद आर्मी पे हमला हुआ था और वो चित्राल एरिया में हुआ था।
यार एक मिनट, पहले तो
फिर
मैं जो
तुर्बत में ये आपका हो गया, आप
नहीं नहीं
जो
नहीं
इनके
एक मिनट संजय जी, पहले तो अगर आप कुर्रम एजेंसी की बात कर रहे हैं
जी
उसमें आपको ये एक थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी कि क्या वो शिया सुन्नी फसाद था या
नहीं, वो तो उससे भी पहले हुआ था, मैं तो केवल पिछले 15 दिन की बात कर
नहीं, मैं वही
रहा हूँ। वो
यही
जो जो
अभी एक
जिस
एक जो हमला
जिसके
हुआ।
बाद में पाकिस्तान ने अंदर घुस के उनको मारा था, आप याद कीजिए शायद।
अच्छा वो हाँ ओके दैट वाज, बट नो दैट वाज नॉट इन कुर्रम, आई थिंक दैट वाज इन नॉर्थ वजीरिस्तान, मीर अली में था, जिसमें वो उन्होंने पुलिस पोस्ट को अटैक या आर्मी के जो कैंप था उसको अटैक किया था। पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हमारे 6 या 7 सोल्जर्स मारे गए, जिसके बाद फिर इन्होंने दोबारा वहां पर
हाँ,
जो
बट
एयर
जो
वगैरह
अटैक
किया।
उन्होंने किया था वो उन्होंने खोस्त और पक्तिका में किया था, विच इज अक्रॉस कुर्रम एजेंसी।
पाकिस्तानी कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 जगह पे नहीं किया था, लगभग 6 से 8 जगहों पे किया था अटैक पाकिस्तानियों ने। लेकिन अब उसका क्या नतीजा निकला नहीं निकला, शायद बेसिकली इट वाज फॉर इफेक्ट, क्योंकि कोई बहुत बड़ी तादाद में या कोई सिग्निफिकेंट कोई कमांडर की मौत हुई है इसकी तो कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई किसी के पास भी। तो वो फिर उन्होंने वहां पर किया, उसके बाद एक तवातर से दोबारा से हमले शुरू हो गए वहां से। लेकिन देखिए
ग्वादर पे भी
आप
हमला हुआ, ग्वादर
वही
पे भी हुआ।
ना, ग्वादर में हुआ हमला, उसके 1-2 दिन के बाद आपका यहां पर हो गया ये क्या बोलते हैं तुर्बत में हो गया, ठीक है, वो BLA ने दोनों क्लेम किए हैं। अच्छा कल परसों तुर्बत में हुआ है तो आज ऊपर बिशाम में कर दिया है, वो तालिबान ही होंगे बिकॉज वहां पर तो बलोचों का कोई वो नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो वहां पर तालिबान काफी फैले हुए हैं, वहां पर पहले भी हमले हो चुके हैं उसी एरिया में और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, दासू डैम के प्रोजेक्ट के ऊपर वहां पर भी। तो बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप इंडस नदी को देखें, सिंधु दरिया को अगर आप एक डिवाइडिंग लाइन लें, तो वेस्ट ऑफ सिंधु नदी ऊपर से लेके नीचे तक वो सारा का सारा जो एरिया है एक लिहाज से अफरा तफरी का माहौल है और इट्स इट्स स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ये बाहर बैठे तो यही नजर आता है। और जो सिंधु दरिया के इस तरफ वाला ईस्टर्न साइड है वहां पर भी अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि भूखमरी का एक आलम पैदा होना शुरू हो गया है, लूटमार शुरू हो गई है, स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक लिहाज से उसमें एक इंक्रीज आया है, स्पाइक आया है, वो कराची में ही नहीं, वो आपको लाहौर में और इस्लामाबाद में सब जगह आपको नजर आता है। ऊपर से जो बेसिक जो सरकारी तंत्र है वो अभी भी वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब कि इट्स द 1980s 1990s के ये रियासत तो पाकिस्तान तो पाइंदाबाद है, तो अब वो पाइंदाबाद का पैंदा कब निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा।
ऊपर से चीन कह रहा है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए।
नहीं, चीन बेचारा और क्या बोलेगा, वो देखिए ना, अब वो चीनियों को जो टारगेट किया है दैट्स वेयर इट हर्ट्स द पाकिस्तानीज, कि आप इतने दबंग दावे करते थे कि हम तो चीनियों को प्रोटेक्ट करेंगे, अभी कल परसों ही एक और आया कि हम और ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं लोगों को, कल परसों ही वो खबर आई है, ठीक है, या तीन दिन पहले आई है खबर कि अब जो सीपेक की जो सिक्योरिटी है या जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी हम वो क्या बोलते हैं आपकी आईएएस वालों की क्या भाषा है, चाक चौबंद कर दिए, क्या करते हैं जो भी आप करते हैं, तो इसी टाइप का आप लोग कुछ करते हैं ना, तो इस टाइप की चीज अनाउंस की है, उसके दो दिन के बाद इतना बड़ा एक हमला हो गया। और कोई ये पूछे कि भाई वो एक ऐसा एरिया है जहां पर आपने सैचुरेशन सिक्योरिटी डाली हुई है, जहां पर यू नो एक एक इतनी आप क्लोज उसको मॉनिटर करते हैं सारी सिचुएशन को, एक इतनी बड़ी गाड़ी जिसमें पूरा का पूरा वो धमाका वाला मवाद भरा हुआ है वो आती है और एक कॉन्वॉय को अटैक करती है और किसी को कानों कान खबर नहीं थी, हाउ डज इट हैपन, तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सवालों का कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि जिन्होंने जवाब देने हैं सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, तो वो किसी बेचारे सिविलियन को लटका देंगे इसमें, उसको अकाउंटेबल बना देंगे। चीनियों को अब जैसे वो आज शहबाज शरीफ गया है अपने घुटनों के बल चीनी एम्बेसी में जाके वो रजिस्टर विजिस्टर साइन करके आया है, उसका यही काम बचा है, प्रधानमंत्री है वो जाके कंडोलेंस रजिस्टर ही साइन करते जा रहा है सब जगह जाके, उसकी ट्वीट देखो, किसी दिन वो ब्रिटेन के किंग को बेचारा उसके साथ कमिसरेट कर रहा है या उसको कुछ बोल रहा है, अगले दिन किसी और के साथ वो अफसोस जाहिर कर रहा है, वो जो हमारे पंजाब में कहते हैं ना हर दूसरे दिन किसी ना किसी के घर जाके अफसोस ही जाहिर कर रहा है, और तो कुछ कर नहीं सकता बेचारा, और उसके पल्ले भी कुछ नहीं है, तो ये हालात हो गई है। अब जब तक चला सकते हैं तब तक चलाते रहेंगे, झूठ वूट बहुत बोलेंगे कि हम तो बड़े हिप एंड हैपनिंग है, हमारे तो अभी बड़ा सब कुछ अच्छा चलने लगा है, हमारी तो इकोनॉमी भी स्टेबलाइज हो गई है। अब मेरे को कोई ये बताए ना कि इस हमले के बाद चीनी कितना पैसा डालेंगे, और वो तो और इनसे अभी देखिए अभी एक प्रेशर आएगा इनके ऊपर चीनियों से कि अब आप चीनियों की जो सिक्योरिटी है वो आप हमारे को दीजिए, अगर आपको नोट चाहिए हमारे तो चीनियों की सिक्योरिटी अब हम हैंडल करेंगे, ये पहले से वो दबाव बनाते जा रहे हैं इनके ऊपर, तो अभी वो और बनाएंगे तो फिर अब इनके लिए मुसीबत हो जाएगी पाकिस्तानियों के लिए, उसका मतलब ये है कि चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस विल कम इनटू पाकिस्तान एंड विल हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो तालिबान या जो चीनियों को टारगेट कर रहे हैं उनको तो और अच्छे टारगेट मिल जाएंगे, और ज्यादा मिल जाएंगे टारगेट। सो मतलब कि दिस इज बिकमिंग अनमैनेजेबल सिचुएशन, लेकिन अगर आप जो फौज और ये जो इनके सारे वो हैं तो वो अपनी छातियां ठोकते जा रहे हैं अभी भी कि हम सबसे तगड़े हैं, इमरान खान के खिलाफ तो बहुत तगड़े हो आप, बाकी जब जगह पे जाते हुए आपकी फुस हो जाती है, आपकी औकात सामने आ जाती है आपके,
नहीं तो वो तो जंगजू कौम है ना, जंगजू कौम है वो कोई,
और यार इतने जंगजू होते तो इतनी तादाद में कन्वर्ट करते, छोड़ देना।
I ये देखिए दो खबरें मैं पढ़ रहा हूँ आपको, ये कह रहे हैं फ्रेश क्लैशेस बिटवीन इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पाक आर्मी बैक्ड टेररिस्ट अलोंग द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर कैजुअल्टीज रिपोर्टेड। दूसरी तरफ चाइना का एक स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है पाकिस्तान में कि चाइना हैज प्रॉमिस्ड टू मेक दुबई लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्वादर। इस पर कॉमेंट करेंगे कृपया।
यार पहली वाली तो जो खबर है मेरे ख्याल अभी आई होगी, मैंने देखी नहीं है, लेकिन
अभी ये 3-4 घंटे पुरानी है।
हाँ तो उसमें जो आपने पढ़ा है उससे तो महसूस ये होता है कि ये जो इस्लामी कुछ तंजीमें हैं पाकिस्तान में जो बेस्ड हैं, उनके साथ क्लैश हुआ है ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं हुआ। तो वो तो एक 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 तरीके का न्यू नॉर्मल है उस एरिया में अब, और वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म का एरिया बनते जा रहा है वो सारा, जो ट्राई जंक्शन है अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ दैट एरिया ऑफ बलूचिस्तान, वो काफ़ी अब एक इट्स बिकम अ वेरी सेंसिटिव एरिया, स्मगलिंग बहुत होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, वो सब कुछ घुल मिल गया है, इट्स बिकम अ विचेस ब्रू। तो एक तो वो है, दूसरा जहां तक वो सीपेक वाला है कि वो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, यार 2013 से प्रोजेक्ट शुरू किया है, अभी तक तो जो पोर्ट है उसमें मेरे को कोई ये बता देना कितनी शिप्स आती हैं उस पोर्ट में, 10 साल हो गए हैं, कोई बताए तो सही भाई। उस पोर्ट ने तो सारी दुनिया का नक्शा बदल देना था, पाकिस्तान को जो दुनिया की सारी ग्लोबल ट्रेड है उसके सेंटर बना देना था, गेम चेंजर, डेस्टिनी चेंजर।
वहां पे बेसिक लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं है तो अरे कौन सा शोपा
है, छोड़िए ना, पानी नहीं है यार पीने का, बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए आप, पीने का पानी नहीं है, ठीक है। तो अब मतलब अब ये वही है ना शेख चिल्ली मॉडल, सोते हुए हैं कि अच्छा जी वो चीनी आएंगे फिर ये बनाएंगे फिर उसके बाद ये होगा फिर उसके बाद ये होगा, सडनली एक हमला हो जाता सारे सपना मेरा टूट गया। वो कौन सा गाना था, एक आज मेरे को हिंदी फिल्मों के गाने बड़े याद आ रहे हैं,
मेरा सुंदर सपना टूट गया मेरा सुंदर सपना टूट गया।
तो अब यही हो रहा है ना, अब कोई सी दैट इज द प्रॉब्लम विद दीस गाइस, कि जो काम करने का है वो करना नहीं है, फिजूल की भांजते रहना है भांजते रहना है भांजते रहना है, फिर वो पब्लिक भी इतनी सी वो एटीट्यूड ही वो वाला है ना इन लोगों का, ये जो वहां पर थे वेस्ट पंजाब में जो सारा कन्वर्टेड कम्युनिटी है, इनकी बेसिकली वो है ना कि दमम तो था नहीं, तो फिर जो हाकिम है उसने जो ऑर्डर कर दिया वही हमने फॉलो कर लिया, और वो भी ब्लाइंडली कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो ये तो वो लोग है ना, इनका कोई मॉरल फाइबर थोड़ी ये था, जिसके पास ताकत है उसके ये पूत है, मतलब ये अपनी किस्म के ये राजपूत है एक लिहाज से।
आज आपने एक ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले, वो मैं बोलता हूँ डेस्क को जरा वो थोड़ा लाए, जरा उस ट्वीट को स्क्रीन पे दिखाएं। इसमें आप कह रहे हैं कि साहब की चाइनीज विल अल्टीमेटली बी शॉर्ट चेंज्ड बाय द पाकिस्तानीज, और द डे द चाइनीज स्टॉप थ्रोइंग मनी एट पाकिस्तान एंड स्टार्ट इवन अ टेंटेटिव नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया द पाकिस्तानीज विल शाफ्ट देम सो हार्ड दे वोंट नो व्हाट हैपेंड। प्लीज एक्सप्लेन
भाई, अमेरिका के साथ क्या किया आप मुझे बताए ना। देखिए आई कैन टेल यू फ्रॉम अर्ली 90s देयर वाज एक तरीके की कोशिश जारी थी भारत में कि यार अमेरिका के साथ हमारे को, हमने क्यों उनको अपना, हम लोग क्यों अभी भी, और जो अभी तक हमारे को 30 साल हो गए हैं उसके बावजूद अभी भी हमारे को बहुत सारा सस्पिशन है, कुछ तो सस्पिशन लेजिटिमेट है, लेकिन उस जमाने में मुझे याद है कि अगर आप किसी भी अधिकारी से बात करते फॉरेन ऑफिस में या यू नो कहीं और, तो इतना डिस्ट्रस्ट था अमेरिका का कि नहीं अमेरिका कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, अमेरिका कभी पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, वो हरदम हमारे पाकिस्तान को अपने साथ रखेगा, हमारे साथ वो खेल खेल रहा है। भाई कुछ हद तक तो सारी दुनिया एक दूसरे के साथ खेल खेलती है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, ठीक है ना। कोई आपका उस लिहाज से दोस्त नहीं होता, हालात बदलते हैं तो दोस्तियां भी बदल जाती हैं, ये व्यक्तिगत जीवन में भी होता है और ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये होता है, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। बट द वर्ल्ड वॉज शिफ्टिंग भाई, सोवियत यूनियन टूट गया था अर्ली 90s में, उसके बाद दुनिया एक नई करवट ले रही थी, उसमें हिंदुस्तान की एक अहमियत बढ़ रही थी। उस जमाने में चीन वाला फैक्टर नहीं था, लेकिन द अमेरिकन्स वर रिकॉग्नाइजिंग कि यार इंडिया इज अ प्लेयर वी कांट इग्नोर, एंड इंडियंस रिकॉग्नाइज कि यार अमेरिका जो है इसके साथ आप मतलब कि इस जंगल में रहना है तो शेर के साथ दोस्ती तो करनी पड़ेगी। अब वो शेर आप गधा बनते जा रहे हैं तो वो एक अलग बहस है, लेकिन शेर के साथ आपको दोस्ती कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर भी एक प्रैग्मेटिज्म था, अमेरिका के अंदर भी एक रियलाइजेशन थी, रिश्ते उस तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए उस चीज के साथ एडजस्ट करना बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों ने तो बड़ी अच्छी तरीके से किया लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। दे कुड रिकंसाइल टू इट, क्योंकि उससे पहले आपका एक 40 साल का बैगेज था जो आप लेते हुए आए थे। अच्छा, अब अगर आज की डेट में आप किसी को यही चीज चाइना के बारे में बोले, क्योंकि भारत और चीन के, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बड़े अच्छे दोस्त बन जाएंगे और हमारा चीन के साथ कोई फड्डा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारा तनाव नहीं है, सब कुछ है, मैं मानता हूं वो सब कुछ है। मैं ये भी मानता हूं कि चीन की जो व्यापार की नीतियां हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रीडेटरी है, मैं ये सब मान के चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज के एक एक ऐसा टाइम भी आएगा 5 साल 10 साल 15 साल में जब चीन को भी याद तो ये होगा कि तब तक आपका उनके साथ युद्ध हो चुका होगा, या चीन को ये एक बात समझ में आएगी कि यार हम किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं, हमारी तो जब से भारत और चीन का वजूद है तब से हमारी तो कोई शायद आधी या एक जंग हुई है, एक तो 62 में हुई थी वो भी एक बॉर्डर स्कर्मिश ही थी एक लिहाज से अगर देखा जाए, और एक कोई हिस्ट्री में कभी कहीं हुई है, नहीं तो हमारे तो बड़े अच्छे एक तरीके से ताल्लुकात थे, मतलब कि कल्चरल रिलेशनशिप। आप चीन जाइए कभी, आप उनका कल्चर देखिए, देयर आर रिमार्केबल सिमिलैरिटीज बिटवीन चाइनीज कल्चर एंड आर कल्चर इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके की हमारी पूजा पद्धति है, जिस तरीके की हमारा बिलीफ सिस्टम है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। आप शॉक हो जाएंगे कभी आप किसी चीनी से इस स्तर पर अगर बात करेंगे, यू विल रियलाइज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो जो फॉरेन पॉलिसी में या डिफेंस या इस टाइप, मैं आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप ये यू हैव टू केटर फॉर द पॉसिबिलिटी कि आज से 15-20 साल के बाद ये एक बहुत इमिनेंट पॉसिबिलिटी है कि आपका और चीन के रिश्ते में एक बदलाव आएगा, क्योंकि उसका एक अपना लॉजिक होगा, वो लॉजिक आज मैं कुछ स्पेकुलेट कर सकता हूं, हो सकता है कल वो लॉजिक थोड़ा दूसरा हो जाए, लेकिन एक आपको नजर आ रहा है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, चीन एक शक्तिशाली देश है, अब दोनों का एक 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 अपना देखने का, दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया है, जहां पर कई जगहों पर क्लैशेस भी हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हम लोग आपस में मिलके भी चल सकते हैं। तो आई एम सेइंग दैट यू लुक एट अ फ्यूचर और वो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप और चीन की कल को दोस्ती हो सकती है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंसेस दैट कैन बिल्ड अप। अगर वो हालात होते हैं तो पाकिस्तान कहां जाएगा, वापस अमरीका के पास जाएगा भाई, उनकी यही कैलकुलेशन होगी कि चीन छोड़ेगा हम अमरीका के पास चले जाएंगे, अमेरिका छोड़ेगा हम चीन के पास चले जाएंगे। ये तो अब मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन आप समझ रहे हैं वो क्या शब्द है, ये तो उस तरीके है ना, इट्स लाइक अ कॉन्क्यूबाइन स्टेट, ठीक है, आज इनके साथ है कल दूसरे के साथ चले जाएंगे, जहां से पैसा मिलेगा वहां चले जाएंगे। तो इनके तो इनका तो बेसिक कैरेक्टर ये है पाकिस्तानियों का। द पॉइंट इज दैट बट दे विल थिंक हम ये कर लेंगे क्योंकि हम तो बड़े स्मार्ट हैं। अब ये चलाकियां कर करके ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि जिन लोगों को इन्होंने खड़ा किया अपने दुश्मनों के खिलाफ, यही इनके खिलाफ हो गए हैं भाई। ये जितनी तंजीमें थी, खास तौर पर ये जो इस्लामी तंजीमें हैं, ये सारी इन्हीं के तो बगल बच्चे थे, और अब आज उन्होंने अपनी बंदूकें इन्हीं के ऊपर तान ली है. सो द पॉइंट इज दैट दैट इज द वे द वर्ल्ड ऑपरेट्स. नाउ दे आर सो स्टूपिड कि इनको समझ ही नहीं आई ये बात. तो अब
आप रियलिस्टिकली इफ देयर इज एन ऑल आउट वॉर बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान, तो आपको क्या लगता है क्या होगा?
संजय जी देखिए, वॉर को प्रेडिक्ट करना दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है. मतलब आप आईपीएल का मैच प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वॉर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, बिकॉज बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं किसी भी जंग में. पहली बात तो ये है कि अगर वॉर हुई, अगर ऑल आउट वॉर हुई, देखिए मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की तो वाट लगेगी, चाहे वो ऑल आउट वॉर हो या एक वॉर ऑफ एट्रिशन हो. मेरा तो ये मानना है, आई एम कन्विंस्ड ऑफ इट, क्योंकि आपकी रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि आप ये वॉर ऑफ एट्रिशन भी नहीं झेल सकते. ये बड़ी एक्सपेंसिव वॉर होती है. ये हम इंडियन स्टेट से कोई पूछे ना कि जो जिसने 30-40 साल टेररिज्म को झेला है और उसके खिलाफ अपने सिस्टम्स बनाए हैं, उसके खिलाफ पता नहीं हजारों लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, आप भारत के सिस्टम से पूछिए ना कि कितना खर्चा होता है इस चीज में, राइट? आप तो अधिकारी रहे हैं, आपको तो कुछ आइडिया होगा जरूर. तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन. लेकिन जो ऑल आउट युद्ध है वो भी बड़ा एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है. ऑल आउट युद्ध का क्या मतलब है? आप अपनी फौजें भेजेंगे अफगानिस्तान के अंदर, फिर वो जाके क्या करेंगे? वो जाके मार काट करके वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद क्या अफगान आपको छोड़ देंगे? क्या वो वहां पर रह के काबिज होंगे? काबिज होंगे तो फिर क्या अफगान आपको छोड़ देंगे? बाकी लोगों जिनकी आपसे रंजिश है वो क्या वहां पर किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे? लेकिन पाकिस्तानियों का ये मानना है कि ठीक है, यही जो मैंने आपको पाकिस्तान का बताया ना कि हम अगर चीन ने छोड़ दिया हम अमरीका के पास चले जाएंगे, अमरीका ने छोड़ दिया हम चीन के साथ चले जाएंगे. आइडियल हमारे के साथ ये होगा कि एक रात इसके साथ सोए और दूसरी रात उसके साथ सोए, ठीक है ना, या सुबह इसके साथ रात को दूसरे के साथ. तो ये तो इनका चीन और अमरीका को लेकर के रवैया है. जहां तक तालिबान का सवाल है या अफगानिस्तान का सवाल है, ये अभी जो कोशिश कर रहे हैं कि इनको अभी ये समझ आ गया कि यार तालिबान के साथ तो हम ज्यादा देर तक निभा नहीं पाएंगे. क्या हम इनको डरा धमका सकते हैं? लेकिन मेरा, मैंने अभी एक लेख लिखा था जिसमें मैंने ये कहा कि अगर ये बमबारी से मामला सुलटता तो फिर अमरीका तो अभी तक जीत गया होता ना, अमरीका को तो फिर शिकस्त ना होती वहां पर. तो अगर पाकिस्तानी जो अपने आप को बड़ा फिर से छाती अपनी ठोक रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एक तो इतने फट्टू है ना साले कि हमने ये सब कुछ कर दिया. अब इनसे कोई ये पूछे कि यार अमरीका तो कर रहा था यही, तो अमरीका ने कौन सा कोई झंडे गाड़ दिए वहां पर? फाइनली निकलना ही पड़ा ना, तो ये बमबारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप क्या कर पाएंगे अब? अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं कि कुछ हद तक एक होल्डिंग ऑपरेशन करेंगे, कुछ हद तक ये एक कोशिश अभी इनकी जारी है कि हम वही लोग जो पुरानी अफगान सरकार में थे, जो नॉर्दर्न अलायंस, फॉर वॉन्ट ऑफ अ बेटर वर्ड, नॉर्दर्न अलायंस तो कब की खत्म हो गई थी, लेकिन जो ताजिक, उज़्बेक या जो नॉन तालिबान पश्तून है या जो बाकी लोग हैं, या तालिबान के अंदर अगर किसी गिरोह को ही अपने साथ मिला सकें, तो इनको मिला मुलू के हम एक काउंटर तालिबान फोर्स खड़ी करते हैं. अब उसका एक असर होगा कि अगर आपस में इनकी लड़ाई हो जाए तो हम बच जाते हैं, पहली बात. दूसरी बात यह कि अगर तालिबान ने हमारे को ज्यादा तंग किया तो हम इनके ऊपर एक नई जंग थोपेंगे इन प्रॉक्सीज के थ्रू. लेकिन इशू यह है कि उस जंग को सपोर्ट कौन करेगा, और उसका जो कत्लेआम होगा वो इतना खौफनाक होगा कि उससे भी पाकिस्तान बचेगा नहीं. दे कांट आइसोलेट देमसेल्व्स, इंसुलेट देमसेल्व्स फ्रॉम दैट. तो उसका भी एक असर पड़ेगा इनके ऊपर. लेकिन ये कोशिश वो कर रहे हैं. तो अगर पूरी तरीके से जंग करते हैं तो वहां पर फंस जाएंगे, अगर नहीं करते तो फंसे हुए हैं. और ये तो क्योंकि छापामार युद्ध है तो ये तो कहीं पे भी कभी भी जाके कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं, तो उसको उनको कोई रोक टोक थोड़ी है. वो उसका उसमें एक उतार चढ़ाव आते रहेगा, लॉसेस भी लेंगे वो, लेकिन लॉसेस का उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो प्रॉब्लम तो पाकिस्तानियों के लिए होती है ना. अब ये अब आपने शुरू भी तो इन्होंने किया ना. अच्छा, अभी भी देखिए, रस्सी जल गई, बल नहीं गया इनका. अभी देखिए क्या बोलते हैं, देखिए हमने तालिबान को 20 साल हमने इनको प्रोटेक्ट करके रखा और इसका सिला हमको ये दे रहे हैं। तो उस समय तुमने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा ना, उस समय जब आप क्लीन अप कर सकते थे ये जो सारा आपने 70 के दशक या 80 के दशक में शुरू किया, जिहाद की जो फैक्ट्री आपने चालू की, आप उसको बंद कर देते जब अमेरिका बहादुर आ गया था यहां पर, आज इस सारे खित्ते की हिस्ट्री डिफरेंट होती। आपने वही काम दोबारा से किया, अब वो आपके गले पड़ गया, तो अब आप बोलते हो कि यार ये तो हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी चलता है यार, दिस इज नॉट द वे थिंग्स वर्क। तो अब जो वो कहते हैं ना कि कर्म इज अ बिच, तो जो कर्म किए हैं उसकी सजा आपको मिलेगी और मिल रही है।
बल्कि अब आप ये देखिए कि जो पुरानी अफगानिस्तान रिशीम थी अहमद गनी वाली, उसको तो ये जो बोलते थे कि भाई इसको गिरफ्तार कर लो तो वो कर लेते थे। अब देखिए कितने हजार तालिबान उन्होंने जो है वो पकड़ के रखे हुए थे जेलों में,
बेशक
जिसको ये तालिबान ने जीतते ही सबको छोड़ दिया, उनको असलहे और दे दिए। तो इनकी प्रॉब्लम तो उस दिन से शुरू हो गई, जिस दिन से कहा कि भाई कि इमरान खान ने कहा था ना कि भाई दे हैव वन देयर फ्रीडम, तो उन्होंने अपनी फ्रीडम
शैकल्स ऑफ स्लेवरी, गुलामी की तोड़ दी
है, तो वो शैकल्स ऑफ स्लेवरी उन्होंने तोड़ी और चालू हो गए पाकिस्तान के साथ।
भाई वो तो अब शैकल्स ऑफ स्लेवरी पाकिस्तान की भी तो थी, वो भी तोड़ दी उन्होंने। देखिए आप यू नो आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, जो वो पुरानी सरकार थी, जो अफगान रिपब्लिक थी, इस्लामिक रिपब्लिक जो थी, उनकी लिमिटेशंस थी, उनके उनके बहुत सारे एरियाज में उनका कंट्रोल ही नहीं था, दोस्तों अनगवर्न्ड स्पेसेस, खास तौर पर जो वो पट्टी लगती थी पाकिस्तान के सरहद के साथ या साउथ ऑफ अफगानिस्तान में कुछ एरियाज थे जहां पर उनका उनका कंट्रोल वो कर ही नहीं पा रहे थे। और ये लगभग 10-12-15 वर्ष से ये प्रॉब्लम थी, हलमंद के कुछ एरियाज थे, कुछ और एरियाज थे अप नॉर्थ, ये पक्तिका, ये जो खोस्त वाला जो एरिया है, इस सारे एरिया में। तो दोज़ वर अनगवर्न्ड स्पेसेस इन मेनी वेज, वहां पर अफगान हुकूमत क्या कोई कोई था ही नहीं, उनके कोई वही नहीं था, प्रेजेंस ही नहीं थी। तो वहां पर ये जो सारी तंजीमें थी वो वहां पर ऑपरेट करती थी। अच्छा, क्योंकि वो वहां पर ऑपरेट करती थी, टीटीबी भी करती थी, तालिबान भी करते थे, वहीं पे आईएस वाले भी लोग होते थे, ऑपरेट करते थे उन एरियाज में, खास तौर पर ईस्टर्न और ईस्टर्न अफगानिस्तान में। वहां पर जब वो ऑपरेट करते थे तो पाकिस्तानी ब्लेम करते थे कि ये अफगान सरकार इनसे काम कार्रवाई करवा रही है, ठीक है। अच्छा, अफगान सरकार के जब भी उनके हत्थे कोई चढ़ता था वो उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते थे, बट पाकिस्तानियों ने अपना दुष्प्रचार उनके खिलाफ लगातार किया। जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान काबिज हुए, उससे उस दिन या उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद, माय मेमोरी इज फेलिंग मी, उन्होंने सारे जेल खोल के सबको रिहा कर दिया,
करेक्ट,
ठीक है ना। तो भाई जिस बंदे ने पकड़ा हुआ था उनको, उसके ऊपर तो आपने पता नहीं क्या क्या तोहमतें लगाई, और जिन्होंने छोड़ दिया उसको आप अपना मित्र मानते थे, तो फिर आपसे बड़ा अहमक कौन है, आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान और कौन है। लेकिन पंजाबी तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप उनसे, स्टूपिड रेस पंजाबी मुस्लिम, यूनिकली स्टूपिड।
आप ये बताइए कि भारत के लिए इसमें क्या रिलीफ है और भारत के लिए क्या चौकसी रखने की आवश्यकता है। अब आप देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन तो ये अब भी कराते रहते हैं, हालांकि बहुत कम हो गया है, लेकिन मौका चूकते नहीं ये अभी भी। अब थोड़ा सा शायद इन्होंने रीलोकेट किए हैं यूनिट्स, तो अभी इंडियन बॉर्डर पे क्या स्थिति है।
नहीं देखिए, इंडियन बॉर्डर स्थिति अभी कंट्रोल में है, इन द सेंस के आई डोंट थिंक वी हैव लेट डाउन आवर गार्ड, और बीच बीच में कहीं ना कहीं उनको कोई गैप्स मिलेंगे तो फिर आपको कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, जिस तरीके के आप वो ये जो आपका साउथ ऑफ पीर पंजाल जो एरिया है, सारा राजौरी वगैरह वाला जो एरिया, वहां पर ऑपरेशंस दोबारा से शुरू किए, जो चिनाब वैली और वो वाला सारा एरिया, वहां पर कुछ नए ऑपरेशंस अब लॉन्च कर रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ा दी गई है क्योंकि ये वहां पर काफी हद तक कुछ कार्रवाइयां हुई हैं पिछले चंद महीनों में, लेकिन बाय एंड लार्ज द सिक्योरिटी सिचुएशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल इन कश्मीर। थोड़ा बहुत पंजाब में ये अभी करते हैं, ये खालिस्तानी एलिमेंट को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको कुछ फंडिंग, तो खैर फंडिंग तो नहीं करते, फैसिलिटेशन बहुत करते हैं, ड्रग्स व्रग्स उनके हाथ में दे देते हैं, तो वो सारा इनकी मुहिम जारी है। उसमें पाकिस्तानी जर्नैल जो है वो भी खूब पैसा बनाते हैं, पाकिस्तानी अधिकारी जो है वो भी सारे लुप्त हैं ये ड्रग्स व्रग्स के धंधे में, तो ये सारा इनका स्मगलिंग ड्रग्स ये सब कुछ जो है उसमें ये सारे के सारे मिले जुले हैं। तो वो सारी चीजों पर हमारी तवज्जो है और रहनी भी चाहिए। कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी हैं उनके ऊपर अभी तक तो आपने एक बहुत एक कड़ी नजर रखी हुई है और उनको एक लिहाज से खदेड़ा हुआ है, लेकिन ये जरूरी होगा कि कल को जब वहां पर चुनाव होते हैं, और मैं पार्लियामेंट्री चुनाव की नहीं बात कर रहा, स्टेट असेंबली के जब इलेक्शंस होते हैं, देन वी विल नीड टू मेक श्योर के हालात वापस फिसले ना। हाउ दे विल डू इट आई डोंट हैव एन आइडिया, बट दे हैव टू थिंक ऑफ सम वे ऑफ इंश्योरिंग के ये दोबारा से अगर कोई ऐसी सरकार वहां पर बनती है जो यू नो एनसी की या कांग्रेस की या पीडीपी की या एक मिली जिली इन सबकी मिल के एक सरकार ये कुछ बनाते हैं या इस टाइप का कुछ होता है, तो ये जरूरी होगा कि हालात वापस ना स्लाइड करें। अगर वो नहीं होता तो देन इट मींस कि आपने यू हैव क्रॉस द हम्प। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ होते रहेगा, अब वो एक लिमिटेड लेवल पे होता है कि इक्के दुक्के 5-10 लोग इधर उधर आ गए, कुछ गोली वोली चल गई, तो वो तो दिल्ली में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर ये सब कुछ हो जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, वी कैन मैनेज दैट, वी कैन हैंडल इट। खतरा दूसरा है खतरा अब एक लिहाज से ये है कि देखिए, सो इन द शॉर्ट टर्म तो हमारे लिए अच्छा टाइम है, जो हमारे को टाइम देता है रिलैक्स करने का नहीं लेकिन प्रिपेयर करने का अपने लिए बेटर, क्योंकि मीडियम से लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें शुरू शायद हो जाएंगी। और उस सो इन द शॉर्ट टर्म ये है कि पाकिस्तान अपने मामलों में फंसा हुआ है, फंसा रहे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, चरमराई रहे, पाकिस्तान के अंदर एक 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 तरीके का अफरा तफरी का माहौल है वो रहे, बहुत अच्छा है हमारे लिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक 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 ये रहे, क्लैश रहे, बहुत अच्छा है हमारे लिए, पाकिस्तान ईरान के रिश्ते बिगड़ते रहे, बहुत अच्छा है, तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी गुड। इट यही चीज है जो हमारे को एक ब्रीदिंग स्पेस देती है, लेकिन ये चीज जो है वहां पर इनडेफिनेटली नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ समथिंग, जैसे बोलते हैं समथिंग विल हैव टू गिव। अब एज ऑफ नाउ, कल को आप फिर बोलेंगे आपने तो ये बोला था तो इसलिए मैं कर देता हूं, ठीक है ना, जो अभी नजर आता है वो ये है कि हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की रियासत जो है वो कमजोर से कमजोरतर होगी, विच मींस दैट फोर्सेस लाइक ये तालिबान या इस टाइप के जो इस्लामी गुट हैं ये बहुत ज्यादा ताकत पकड़ेंगे।
Yes.
और हालात जो है, और जब अभी तो इनके हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो हमको सुनने में मिल रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनका सारा का सारा फोकस पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा एरिया है जो पंजाबियों के कब्जे में है। तो लेकिन कल को यही जो वहां पर आग लगी हुई है ये हमारी सरहद पे आएगी। दूसरी बात तो एक तो उससे आपको अपने आप को डिफेंड करना है, आपको सिस्टम्स अपने ऐसे बनाने हैं, आपको अपने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगर आज से 10 साल 15 साल 20 साल के बाद अगर इस तरीके का कुछ हो तो आप उसको कैसे खदेड़ेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट टुडे। तो ये ब्रीदिंग टाइम आपको जो मिला उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो खौफ है, जो बहुत लोग अब अक्सर बातें करते हैं, कि अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही बैठ जाती है, भूखमरी हो जाती है, तमाम यू नो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाता है, एक वर्स्ट केस सिनारियो में लेकर के चल रहा हूं अभी, जो जो इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, अगर ये सब कुछ होता है तो फिर एक जो खतरा है वो ये है कि एक लार्ज स्केल अगर एक पलायन होता है आपकी तरफ, जो आज आप अमेरिका में देख रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्ट्रीमिंग इनटू अमेरिका, तो आप क्या करेंगे आप?
ना लेकिन उनकी तो ओपन बॉर्डर पॉलिसी है।
नहीं नहीं, वो ओपन बॉर्डर तो कब हुई है? ओपन बॉर्डर आज से 10 साल पहले तो नहीं थी ओपन बॉर्डर।
अच्छा, ये तो वो तो डेमोक्रेट्स का अपना वो है। अब तो भाई तो मान लीजिए ये सिचुएशन हो सकती है, कांग्रेस की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार कहे कि हमको केवल मुसलमान ही वोट देंगे इसलिए हमको मुसलमान इंपोर्ट करने हैं।
हाँ, तो संजय जी, तो ईस्टर्न साइड में आपने क्या किया 1970 और 80 के दशक में? आपने क्या किया ईस्टर्न साइड में?
यही हुआ था।
हाँ, तो फिर तो आपको क्या लगता है कि ये वेस्टर्न साइड में नहीं हो जाएगा? अब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अगर ओपनली बोलूंगा कोई अहमियत की दूर में केस वेस ठोक देगा, इसलिए मैं ओपनली बोल नहीं सकता।
नहीं नहीं, नहीं। आप हमारे यहाँ केस ठोकते हैं तो जिम्मेदारी हमारी होती है।
नहीं, आपकी नहीं होती, मेरे को पेशियां तो मेरे को भरनी पड़ेगी, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो करने का। लेकिन अगर आप सबसे 1:1 में मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारी आपके पंजाब में ऐसे लोग हैं, पार्टियां हैं जो वेलकम करेंगी, जो सडनली अपने गुरुओं की जो नसीहतें थी वो भूल करके अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ रहे हैं। सिख एक तबका है ना, कल को वो बोलेगा हम तो भाई भाई हैं। अबे कहां के भाई हो? तुम्हारे को उन्होंने जूते मार के बाहर निकाला था वेस्टर्न पंजाब से, तुम बोल रहे हो हम भाई भाई हैं। कहां के भाई हो भाई तुम? तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम्हारे गुरुओं ने क्या बोला तुम्हारे को? बट एक वो है, और भी कुछ पार्टीज हैं,
उन्होंने तो गुरुओं की किताबें ही बदल दी।
किताबें ही बदल दी है उन्होंने अपनी, तो इनका क्या बोला जाए, ठीक है ना। और भी इस तरीके के लोग हैं। तो कल को अगर आपके यहाँ पर एक ऐसी सरकार होती है जो इस चीज को अलाउ करेगी, तो फिर तो आपके लिए आपकी भी ओपन बॉर्डर पॉलिसी हो जाएगी। उसमें आप क्या बोलोगे? आपके यहाँ पर और आपके भी बहुत सारे अनुयायी जो हैं वो अखंड भारत की बातें करते हैं, तो आपको मिल जाएगा अखंड भारत अपना?
मेरे अनुयायी नहीं है, देखिए आप जो है वो कांग्रेसी वाले हैं कि क्या वाले हैं? एक तो कांग्रेस वाले जो है हमको बदनाम कर रहे हैं, और आप जो है वो दूसरों को हमारे अनुयायी बता रहे हैं।
भाई संघ में भी तो बहुत लोग बात करते हैं, ठीक है, एक फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट तो है ना। अभी आप देखना आपके यहाँ पर कमेंट्स में आएगा कि आप अखंड भारत के खिलाफ हैं, तो कर लो ना, आपका हो जाएगा अखंड भारत, फिर संभाल लेना उनको।
भाई हमने तो देखिए, हमने तो कभी अखंड भारत की बात नहीं की।
नहीं, मैं तो
हम पटेल ने बड़ा एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था, और उसको अगर पूरी तरह से फॉलो किया जाता तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड डिसीजन। अंबेडकर ने बोला था, पटेल ने बोला था कि जो जो पाकिस्तान चाहते हैं उनको सबको पाकिस्तान भेजो, लेकिन आप नेहरू जी के आइडियाज अलग थे
बाबू। द इशू इज समथिंग एल्स, द इशू व्हिच आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज, व्हिच आई एम फ्लैगिंग, मे और मे नॉट हैपन, लेकिन जो मैं फ्लैग कर रहा हूँ वो ये है कि देखिए, एक वो वाला तबका है जिसके बारे में मैंने बोला आपको कि हम तो एक ही हैं, दूसरा एक तबका वो भी है जो बोलता है जी अखंड भारत होना चाहिए। भाई एक वो है ना, तबका तो है, क्या होगा यहाँ पर या 10 साल के बाद क्या होगा, वी डोंट नो, वी कांट लुक, आई एम नॉट अ सूथसेयर। लेकिन अगर आपके यहाँ पर हालात कुछ इस तरीके के हो गए जहां पर आप बोलोगे कि जी ठीक है, फिर जो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में वो खत्म हो रहा है, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है इससे? अब उसके उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके रेपरकशंस क्या होंगे, ये तो ऑब्वियसली लोगों ने सोचा नहीं है। तो एक आइडियोलॉजी को भी एक पर्सपेक्टिव में लेकर के चलना चाहिए ना। आइडियोलॉजी को आप ऐसे ही फैलाते रहो और तो फिर वही अहमकों में की जन्नत में रहने वाली बात हो जाती है, और क्या होता है। सो माई पॉइंट इज कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दैट इज वॉट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व अगेंस्ट। और उसके लिए आपको दो दो डायरेक्शंस में काम करना पड़ेगा। एक मानसिकता के लेवल पे कि हाउ डू यू डिसअब्यूज योरसेल्फ ऑफ दीज वोक नोशंस। ये जो है ना वोकरी जो आपको अमेरिका में नजर आती है या आपको और जगहों में नजर आती है, आप इसके खिलाफ एक कैसे एक अपनी मानसिकता को तैयार करते हैं कि इस चीज को हमने यहां पर घर नहीं बनाने देना नो मैटर वॉट। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये है कि आपने अपने जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उसमें आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको टेक्नोलॉजीज लेकर आनी पड़ेंगी। कुछ टेक्नोलॉजीज जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ जो आगे चल के बनेंगी, आपको किस तरीके के हथियारों की जरूरत पड़ेगी, आपको और क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी। आपको एक सारा का सारा वो जो सिस्टम है उसको तैयार करना पड़ेगा, तब आप बच पाएंगे। नहीं तो आप चले जाएं गुप्ताज के पीरियड में चले जाएं, जब वहां से इन्वेजन आ रही थी, 100-150 साल आपने रोक के रखा, उसके बाद आई एम फॉरगेटिंग, मेरी हिस्ट्री आजकल थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन उसके बाद दे ऑल स्टार्टेड वॉकिंग इन। और ये वही जमाना है कि वहां से सेंट्रल एशिया वगैरह से वो आते थे, वो हुन साक और पता नहीं कौन कौन आते थे, गुप्ता से पहले से आ रहे हैं वो। तो आप 100 साल, हम 5000 की साल की हिस्ट्री है हमारे यहाँ पर, तो हिस्ट्री हम पिछले 5 साल की भूल जाते हैं, हम तो बंगाल में भूल गए क्या हुआ, तो वो दोबारा से हो रहा है डायरेक्ट।
चलिए आइए अब चलते हैं दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं।